धौला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहु वज्रायिरिये अरहंते वंदिऊण सिद्धेवी जे पंचलोगवाले वोच्चं बंधस्य सामित्तम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हमारा तृतीय खंड शुरू हो जाता है और इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। अब ये आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 9 पर हम आ गए। 9 देखो, यहाँ बंध के स्वामित्व के विचय यानी उसकी विचारणा मीमांसा परीक्षा ये करने में आएगी, और वो दो प्रकार से होगी, गुणस्थानों में और मार्गणास्थानों में, जिसको ओघ और आदेश कहते हैं। तो इसमें पहले में पहले बंध विच्छित्ति की बात करेंगे। प्रश्न ये पूछा गया था कि आप बंध के स्वामित्व कहने के बदले बंध विच्छित क्यों कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आया? बंध विच्छित्ति कहने का क्या प्रयोजन है? तो बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या है कि किस गुणस्थान तक ये प्रकृतियां बनती है, उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, उसका अर्थ है बंध की विच्छित्ति। उसी से ख्याल में आ जाता है कि उसके जो नीचे के गुणस्थान वाले वो उसके बंधक है, यानी उस गुणस्थान तक के जीव बंधक है, क्योंकि हम विच्छित्ति वहीं पर देखते हैं जहां उसका बंध भी है। उसके लिए कौन सा नय लगाया था? द्रव्यातिक नय। और उसका नाम क्या बताया था? भूल गए, उत्पादानुच्छेद। हाँ, और एक होता है जहाँ अभाव होने पर उसका कहने देना, उसको कहेंगे अनुत्पादानुच्छेद। इसकी हमने कल बात की थी। फिर प्रश्न ये पूछा था कि 5 ज्ञानवान, 4 दर्शनवान, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, 5 अंतरा, इनका बंधक कौन है, अबंधक कौन है? तो उसके ऊपर उन्होंने 23 प्रश्न पूछे। क्या पेज नंबर 9 पर आए हैं, मैं कल की रिवीजन कर रही हूँ। तो प्रश्न ये पूछे कि उदय पूर्व में रुकता है, उदय की विच्छित्ति पहले होती कि बंध की विच्छित्ति होती पहले? क्या एक साथ होती है दोनों की? क्या उदय के बाद में और बंध के पहले? इस तरह से सारे प्रश्न पूछे गए थे। हाँ, अब उसके बाद बंध विच्छेद तो यहाँ तो बता ही नहीं वाले हैं, स्वयं सिद्ध है इस ग्रंथ में पेज नंबर 9 पर। बंध विच्छित्ति का विषय चल रहा है, अभी सुनो बराबर। ये प्रश्न किसके बारे में पूछे गए थे? बंध विच्छित्ति के बारे में। अब वहां तो कह रहे हैं कि बंध विच्छित्ति तो ये ग्रंथ का विषय ही है ना? तो उसके लिए तो पहली लाइन पढ़ो 9 पेज के ऊपर की। इन पृच्छाओं में विषम पृच्छाओं का अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध विच्छित्ति कहाँ होती है तो सरल प्रश्न है, पर प्रश्न क्या पूछे थे? अरे उदय पहले विच्छित्ति होती कि बंध विच्छित्ति पहले होती है? तो उदय विच्छित्ति जाने बिना कैसे कहेंगे आप? ख्याल में आई ना? कंपैरिजन करने किसमें? बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति में। तो बंध विच्छित्ति तो यहाँ का विषय है ही, तो कहते कि उदय की विच्छित्ति जाने बिना आप कैसे कह सकते हैं कि कौन से पूर्व में होगी, कौन से बाद में या समान काल में होगी? दूसरे भी क्या प्रश्न थे? क्या अपने उदय में बनती है, स्वोदय में बनती है, कि परोदय में बनती है, कि दोनों के उदय में बनती है, स्वपर उदय में बनती है? उसके लिए भी हमको उदय कहाँ तक है, कहाँ है वो होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हम पूछेंगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसके उदय में होता है क्या नहीं होता? उसका उदय होता है 13वें गुणस्थान में, 13वें 14वें में, और बंद तो 14वें से 8वें तक ही होता है। ख्याल में आई बात? इसके लिए क्या आवश्यकता है, कौन सा उदय कहाँ पर है, उदय कहाँ पर होता है, यानी कहाँ से उसकी सीमा भी चाहिए। हम कहेंगे 8वें में बंद विच्छित्ति हुई तीर्थंकर प्रकृति की, पर वो पहले से नहीं बन रही है, 14वें से बन रही है, यानी कहाँ से कहाँ तक बनती है ये भी मालूम चाहिए, कहाँ से कहाँ तक उदय है ये भी मालूम होना चाहिए हमको, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि अपने उदय में बनती है कि नहीं बनती। प्रश्न सारे हमने 23 प्रश्न पढ़े थे, उसके लिए उदय की विच्छित्ति जानना आवश्यक है, ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। देखो फिर हम यहाँ पढ़ते हैं विषय, मैंने जो हमें यह सरल नहीं समझ में आ जा रहे, क्योंकि उदय के साथ कंपेयर करके जो बता रहे हैं या स्वप्न उदय में बनती है कि नहीं बनती, ये जो सारे कैसे प्रश्न विषम है। बाकी तो बंद विच्छित्ति तो सरल है, सीधा है, और वो तो यहाँ का विषय है, वो तो समझ में आवे ऐसी बात है। देखो कल के प्रश्न फिर देखते हैं, पेज नंबर 7 पर से शुरू हुए थे। पहला प्रश्न क्या था, नीचे से चौथी लाइन, क्या बंद की पूर्व में विच्छित्ति होती है, वाक्य के बाद उसका नंबरिंग दिया है, नीचे से चौथी लाइन, इसलिए क्या बंद की पूर्व में विच्छित्ति होती है, ये पहला वाक्य हुआ, पहला प्रश्न, यानी प्रश्न के अंत में उसका नंबरिंग डाला है, क्या उदय की पूर्व में विच्छित्ति होती है। अभी ये जानने के लिए क्या है, बंद की कहाँ विच्छित्ति होती है पूछेंगे तो हम बताएंगे, पर पहले होती के बाद में होती पूछेंगे तो उदय की विच्छित्ति जानना चाहिए, या क्या दोनों के साथ विच्छित्ति होती है। फिर प्रश्न क्या, क्या अपने उदय के साथ इनका बंध होता है, तो उदय है कि नहीं हमें क्या पता, अगर उदय की विच्छित्ति नहीं जानेंगे, कौन सी प्रकृतियां कहाँ उदय रूप होती है मालूम नहीं होगा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं। आगे का भी क्या प्रश्न है, क्या अपने उदय के साथ या क्या पर प्रकृतियों के उदय के साथ इनका बंध होता है, या क्या अपने और पर दोनों के उदय के साथ इनका बंध होता है, इसलिए भी हमको ये उदय के साथ कंपेयर करनी है, तो ये जानना आवश्यक है। क्या सांतर बंध होता है, क्या निरंतर बंध होता है, या क्या सांतर निरंतर, ये तो ठीक है, तो उसकी उदय के साथ कोई बात नहीं है। अब क्या सनिमित्तक है अनियमितक, आगे भी जो बताए ना 13वें के बाद वाला प्रश्न, कितनी गति वाले जीव स्वामी है, यानी कौन से गति वाले जीव कौन सा बंद कर सकते हैं, वो गतियों में कौन सा उदय, वो सारी बातें इसमें हमें पता चल जाती है। अभी हम अपने पेज पर आते हैं, 9 नंबर के पेज पर, फिर से पहली लाइन से पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल उदय की विच्छित्ति आ जाएगी, 23 प्रश्नों का उत्तर सब जगह आने वाला है, इस पुस्तक में आने वाला है, ये सब बातें क्लियर होगी, परंतु उसके लिए हमें बंद उदय की विच्छित्ति पहले जाननी आवश्यक है। हाँ हाँ लिखो लिखो बहुत अच्छा, हाँ हाँ वाह करो, वैसे ही वो कर्मकांड के पुस्तक में भी वो उसकी इतने तो वो उसमें प्रश्न थे ना, 9 प्रश्न वहाँ पर भी पूछे थे, पीछे पीछे छूट जाते, अच्छा है क्योंकि अपना उपयोग इसमें रहता है, ये बात अच्छी है बाय हार्ट करना, क्यों, क्योंकि उस समय हम वो सोच रहे हैं ना, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना उपयोग उसमें लगा है, दुनिया की कोई झंझट राग द्वेष के परिणाम वहां नहीं चल रहे हैं। देखो अब यहाँ 9 नंबर के पृष्ठ पर पहली लाइन से फिर दोबारा पढ़ते, वैसे हम नीचे के दूसरे लाइन तक आए थे। इन पृच्छाओं में विषम पृच्छाओं का अर्थ कहते हुए इस प्रकार है, चूंकि बंद विच्छेद इसी ग्रंथ में सूत्र सिद्ध है, यानी सूत्रों में ही बताया हुआ है, अतएव उसको छोड़कर प्रकृतियों के उदय विच्छेद को कहते हैं, क्योंकि उदय के साथ कंपेयर करनी है तो वो जानना आवश्यक है। अब ये तो हर गुणस्थान के उदय विच्छेद ही बताएंगे, पहले गुणस्थान की याद है क्या, हाँ 10 है, हाँ बताओ, हाँ आतप स्थावर, हाँ और साधारण, आप बताए नहीं। देखो मिथ्या तो पहले गुणस्थान में है, और फिर एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति चार जाति लेना, अब एक इंद्रिय के साथ ही आतप बनता है और उसी के साथ सावर भी बनते, तो ये भी ले लेना, और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, ये हो गए 10। अब दूसरे गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति अनंत अनुबंधी 4 है। तीसरे गुणस्थान में जो सम्यक मिथ्या, तो मात्र तीसरे गुणस्थान में ही उदय है और वही परे आगे कहीं नहीं है, नीचे भी कहीं नहीं है, तो उसकी उदय की विच्छित्ति वहां कहेंगे। चौथे गुणस्थान में 17 थी, तो उसको कैसे सोचना कि चौथे गुण, ये तो देव और नारकियों के चौथे गुणस्थान तक के उसके है, तो जो देव संबंधी जो प्रकृति है उदय वाली वो वहां कहे देना पहले में पहले। एक तो चौथे गुणस्थान का कषाय बता दो, अप्रत्याख्यान उनके 4 तो ये हो गए। हाँ, फिर देवायु नरकायु, देवगति नरक गति, हाँ, क्योंकि इसके साथ वैकरिक शरीर अंगोपांग का उदय होगा वो भी बताना। अब अनुपूर्वी तो केवल देव और नरक ही नहीं बतानी, चारों बताना, क्योंकि विग्रह गति में चौथा ही गुणस्थान हो सकता है, पांचवा आदि ऊपर के तो नहीं हो सकते, इसलिए वो भी बता दिए। अब 3 ही रह गए, दुर्भग, अनादेय और अयशस्किर, हो गए ना याद। हाँ, आगे तो सारे उदय नहीं है, बंद तो है छठे तक, उदय नहीं है, अयश नहीं है, अच्छा है ना, पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर दो। हाँ, बंद है, बंद है।
तीरंज को भी अयश।
हाँ, तीरंज को भी नहीं है, पांचवे में तो उसका उदय है ही नहीं है। आप कहेंगे तो हनुमान जी को कैसा ये बंदर बनाया, तो उनके कौन से कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्म कौन से? अरे अरे सुनो सुनो सुनो, आज भी हनुमान जयंती है। हाँ, 2 पूर्णिमा है। हाँ बोलो, अभी उनका कैसा लोगों ने डिफेम कर दिया ना, बंदर बनाए, पूंछ लगाए, वैसे तो नहीं थे वो, तो ये तो कामदेव थे, मोक्ष गए हुए हैं। हाँ, तो उनके कौन से कर्मों का अभी बाकी है उदय नहीं? हाँ, ये नक्की करो, मोक्ष गए हैं तो कर्म सारे, ये लोगों की भ्रमणा है, पाप का उदय का उनका मिथ्या, तो जो चल रहा है भ्रमणा चल रही है, बात ही है, क्योंकि ईश्वर का ही स्वरूप मालूम नहीं है और उसको ईश्वर इस रूप में उसको ईश्वर बना के पूज रहे हैं, यानी कितना बड़ा पाप को हो गया, कैसे भ्रमणा है। अब यहाँ हम चौथे गुणस्थान तक की उदय विच्छित्ति हमने देखी, आगे बढ़ते हैं नीचे से तीसरे, ये पहले पढ़ना है कि फिर दोबारा? चलो पढ़ लेते हैं 3rd लाइन से, क्योंकि ब्रह्मा भी नहीं थी ना कल। मिथ्यात्व, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन 10 प्रकृतियों का उदय विच्छेद, विच्छेद का अर्थ समझते ना, उसके उदय भी यहाँ तक है, आगे नहीं है, वो रुक गया यहाँ, उसकी विच्छित्ति नहीं है, हाँ यहाँ तक है, इस गुणस्थान में तो है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, अंतिम समय में होता है ना, मिथ्या तो में ही होता है, आगे कहीं पर भी नहीं है, इसे उसका अर्थ है। यह महाकर्म प्रकृति प्रावृत का उपदेश है, इसमें 2 उपदेश अवेलेबल है। चूर्णी सूत्रों के कर्ता यति वृषभ आचार्य के उपदेश से मिथ्यात्व तो गुणस्थान के अंतिम समय में 5 प्रकृतियों का उदय विच्छित होता है। अभी ऊपर की जो प्रकृति है उसमें ये जो 4 जाति है ना और स्थावर, इन 5 को छोड़कर बाकी 5 उन्होंने एक्सेप्ट की है, कौन से? मिथ्या को लिया, आतप लिया, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। अब क्यों? क्योंकि सासादन के साथ एकेंद्रियादि जो इन 4 जातियों के पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होता है, इनका मानना क्या है कि वहां उत्पन्न होने पर शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले सासादन में से मिथ्यात्व में चले जाते हैं, तो इसलिए वो निर्वृत्ति अपर्याप्त दशा जो है, जो किसके होती है? पर्याप्तों के होती है, वहां पर ये गुणस्थान पाया जाता है साधन वाला, इसलिए वहां उसकी उदय विच्छित्ति कहेंगे। ख्याल में ना क्यों प्रश्न? तो मेरा ये प्रश्न है, एक इंद्रिय को लिया, स्थावर को भी उन्होंने दूसरे गुणस्थान में बंद विच्छित्ति, सॉरी उदय विच्छित्ति, मैं चुक जाऊं तो जरा करेक्शन करना, स्थावर की उदय विच्छित्ति तो दूसरे में बताई, तो आतप को क्यों छोड़ा? एक इंद्रिय के साथ आतप भी तो है उदय रूप, बंदी नहीं उदय की बात। बोलो अश्विन भाई, एकेंद्रीय का उदय एक्सेप्ट किया, स्थावर का उदय एक्सेप्ट किया दूसरे गुणस्थान में, यानी वहाँ उत्पन्न हुआ है तो आतप का क्यों नहीं किया, ये मेरे इन लोगों को जरा विचार करने दो ना। उन्होंने उत्तर बता दिया।
हाँ,
उसका उदय हमने नाम कर्म के उदय की बात देखी थी, तो जो विग्रह गति में कितने होता है, 21 का उदय है, फिर वहाँ पहुँचने पर वो गत्यानुपूर्वी का उदय रुक जाता है, अन्य शुरू हो जाता है ना, और फिर उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद वो आतप का उदय होगा। इसलिए भले वो एकेंद्रीय में, इनकी अपेक्षा से एकेंद्रीय में जन्म लिया है, सावर का भी उदय है, एकेंद्रीय जाति का भी उदय है, पर आतप का उदय वहाँ नहीं हो सकता। आतप का उदय होने के पहले पहले वो मिथ्यात्व में चला जाता है। दूसरे गुणस्थान में जन्म तो लिया परंतु शरीर पर्याप्ति होने के पहले ही मिथ्यात्व में गया, और मिथ्यात्व में जाने पर शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उसके आतप का उदय हो गया, इसलिए आतप को एक्सेप्ट नहीं किया पर स्थावर को किया। इस सूक्ष्मता थोड़ी पन जानने योग्य है, क्योंकि ऊपर से छठी लाइन लास्ट, चार जाति और स्थावर, इन प्रकृतियों का उदय विच्छेद सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान में माना गया है, यानी यह दूसरा मत है। अब ये यहाँ तो कोई केवली है नहीं कि बताने के लिए, तो दोनों ही उपदेश यहाँ कह देते हैं कि इनका ऐसा मत है, इनका ऐसा मत है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ का उदय विच्छेद सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, यानी दूसरे गुणस्थान के उदय विच्छेद में इन चार को ले लेना अनंतानुबंधी वाले का। सम्यक मिथ्यात्व का उदय विच्छेद सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में होता है। तीसरे, देखो पहले और दूसरे गुणस्थान में इसका उदय नहीं है, मात्र तीसरे गुणस्थान में है और ऊपर कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ उदय विच्छेदी कही। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, देखो चौथे की अभी बात हो रही है, नरकायु देवायु, नरक गति देव गति, वैक्रिय शरीर वैक्रिय अंगोपांग, अनुपूर्वी में चारों लिए, देवा देवगत्यानुपूर्वी, नरगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिरंज गत्यानुपूर्वी, दुर्भग अनादय और अयशस कीर्ति, इन 17 प्रकृतियों का उदय विच्छेद असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में होता है। ये जहाँ कोई बिंदी वगैरह रहेगी ना प्रिंटिंग में बराबर डालते जाना, यहाँ तक तो अपना विषय हो गया था। अभी पांचवें गुणस्थान उदय है, हाँ बाद में नहीं, ये उसका अर्थ है। अब पांचवें गुणस्थान का जो उदय विच्छेद बताएंगे, यहाँ के कषाय कौन से, तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। अब और भी कुछ प्रकृतियां वो कैसे, जैसे तीर्यंचों के भी पांचवा गुणस्थान प्राप्त होता है, तो तीर्यंचों में जो उदय रूप है, तीर्यंच गति लेना, गत्यानुपूर्वी नहीं लेना, वो चौथे गुणस्थान तक ही हो सकता है। इसलिए तीर्यंच गति, तीर्यक आयु ले लिया पहले, तीर्यक आयु, तीर्यक गति, उद्योत और निज गोत्र, क्योंकि उद्योत का उदय किसके है, तो तीर्यंचों में होता है और वो पंचेंद्रियों के भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिया। और निज गोत्र, क्योंकि तीर्यंच गति में तो निज गोत्र का ही उदय होता है, इसलिए इसको यहाँ तक उदय रूप लिया। बंध की उच्चति निज गोत्र की दूसरे में हुई थी, उदय यहाँ तक है, ख्याल आई। एक बार हम इसको पक्का करेंगे तो हम बाद में कंपेयर कर सकते उदय और बंध विच्छेद के साथ। फिर से पढ़ते, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, तिर्यक आयु तिर्यक गति, आप या तिर्यंच आयु तिर्यंच गति को ही कह सकते हैं, उद्योत और निज गोत्र, इन 8 प्रकृतियों का उदय विच्छेद संयता संयत गुणस्थान में होता है। यानी पहले की हमने 10 देखी, दूसरे में 4, तीसरे में 1, चौथे में 17, अभी पांचवे में 8, अभी छठे गुणस्थान की उदय विच्छित्ति कहेंगे। देखो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, अभी छठे गुणस्थान में ही जिसका उदय है, अन्य कहीं नहीं है, ऐसी कोई प्रकृति मालूम है, आहारक आहारक अंगोपा आहारक दिग जिसको कहेंगे, ये 3 निद्रा और आहारक आहारक अंगोपा। देखो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, आहार शरीर और आहार शरीर अंगोपांग, इन 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद प्रमत्त संयत गुणस्थान में होता है। आहार शरीर लिखा है पर आहारक शरीर होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा हिंदी में आहारक लिखते हैं और प्राकृत में वो आहार भले लिख दे ये छठे की बात हो गई। अब सातवें गुणस्थान की बात है। अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्त सुपाटिका सहन है, इन्हें नीचे के तीन सहन है। और वेदक सम्यक्त्व, एक्चुअली वेदक सम्यक्त्व के बदले सम्यक प्रकृति लिखना अच्छा था, फिर भी उन्होंने ऊपर वेदक सम्मत्तानम आगे सम्यक्त शब्द भी रिपीट हुआ है। वो शब्द सम्यक्त शब्द तो काट ही डालना, और वेदक सम्यक्त को अंडरलाइन करके उसका अर्थ क्या है, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व में से तीन टुकड़े होते हैं ना, सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ तक है, सातवें तक। क्यों? क्योंकि वेदक सम्यक तो चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में होता है, उस सम्यक के साथ कोई श्रेणी में नहीं चढ़ता है, यानी उसका कहाँ तक है, वेदक सम्यक तो सातवें तक। उसका अर्थ क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ तक हो सकता है, सातवें तक। ख्याल में है ना। और देखो दूसरी कौन सी बात ली, ये तीन सहनन, नीचे के तीन सहनन। अब देखो जो कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, क्यों नहीं होता, श्रेणी कौन चढ़ेंगे, उत्तम उपशम श्रेणी भी कौन चढ़ेंगे, तीन उत्कृष्ट सहनन वाले, और क्षपक श्रेणी कौन चढ़ेगा, वज्रषभ नाराज सहनन वाला। परंतु ये तीन सहनन वाले सातवें तक उदय है ना, यानी यहाँ तक तक पुरुषार्थ कर सकते हैं, यानी पंचम काल के अंत तक भी ये जो तीन सहनन, कोई भी जो सहनन है, वे जीव जो द्रव्य से जो पुरुष है वो मुनि होकर सातवें छठा सातवें का पुरुषार्थ कर सकते है। ये निमित्त रूप से बात हो रही है, ये निमित्त के द्वारा हम अनुमान लगा सकते है, ये सहनन कुछ नहीं उनको करते। हाँ, इसलिए सातवें गुणस्थान की उदय विच्छेदी क्या है, ये तीन सहनन और एक सम्यक प्रकृति, ये चार हो गए। छठे गुणस्थान में कितने देखे थे याद है, पांच, और सातवें में चार। अब आठवें का तो आसान है, छह नौ कषाय है। देखो आगे बढ़ते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, इन छह प्रकृतियों का उदय विच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थान में होता है, यानी इसका उदय कहाँ तक है, अपूर्वकरण के अंत समय तक, आठवें गुणस्थान के अंत समय तक इनका उदय है। ये तीन वेद को छोड़ दिया, नौ कषाय नौ होते हैं, उसमें से तीन वेदों को छोड़ दिया, तो बाकी यहाँ छह नौ कषाय ले लिया। अब वह तीनों को हम नौवे गुणस्थान में कहेंगे। अब स्त्री नपुसक और पुरुष वेद, यानी स्त्री वेद, नपुसक वेद, पुरुष वेद, और संज्वलन क्रोध मान और माया, लोभ को छोड़ा क्योंकि वो तो सूक्ष्म लोभ का उदय तो दसवें में है, इन छह प्रकृतियों का उदय विच्छेद अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में होता है, यानी अपूर्वकरण में भी छह, वो छह नौ नौ कषाय आ गए, अनिवृत्ति यानी नौवे गुणस्थान में भी छह, उसमें तीन वेद और तीन संज्वलन। केवल एक संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, यानी दसवें गुणस्थान की उदय विच्छेदी एक है जो सूक्ष्म लोभ है, संज्वलन लोभ कहेंगे उसको। अब ग्यारहवें की बताएंगे, वज्र नाराज और नाराज शरीर सहनन, इन दो प्रकृतियों का उदय विच्छेद उपशांत कषाय गुणस्थान में होता है, यानी उसके ऊपर के गुणस्थानों में जिसका उपयन है, उसके ऊपर गुणस्थान कौन सा है, तो बारवा है, और बारवा गुणस्थान इन दो सहनन वालों को नहीं होता है, परंतु ग्यारहवें गुणस्थान में ये सहनन वाले जा सकते हैं, इसलिए इसके उदय विच्छेद कहाँ बताया, ग्यारहवें में। आप कहेंगे ग्यारहवा वाला ऊपर जाता ही नहीं, उसकी बात नहीं है, कौन से गुणस्थान तक उदय है उसको बताने वाले ये है। तो वज्र नाराज और नाराज सहन ग्यारहवें गुणस्थान के जो उदय विच्छेद कहेंगे तो दो प्रकृतियां हैं। अब बारहवें की बात करेंगे, बारहवें में उपांत समय और अंत समय ऐसे दो भेद करेंगे। निद्रा और प्रचला इन दोनों प्रकृतियों का उदय विच्छेद क्षीण कषाय गुणस्थान के द्विचरम समय में होता है, यानी वहां तक उसका उदय बताया है। भले वो कितने हीन अनुभाग वाले हो गए, परंतु यानी बारहवें के शुरुआत उपांत समय में दो प्रकृतियां, और फिर बाकी जो पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पांच अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का उदय विच्छेद क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में होता है, वो दो और ये 14। यानी चार दर्शनावरण में दो और चार ऐसा भेद किया, यानी एक्चुअली टोटल कहने तो पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और पांच अंतराय, ये 16 हो जाते हैं। यानी 2+14 लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी समझ में आए, अपने याद रह जाए। देखो दसवें में बंधने वाली है पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पांच अंतराय, परंतु वहां और कौन सी बनती है? साता वेद्य भी बनती है, यशस कीर्ति भी बनती है और उच्च गोत्र भी बनता है, पर यशस कीर्ति उच्च गोत्र का उदय रुका नहीं, वो तो अंत तक चलेगा, 14वें तक चलेगा उसका, है ना। परंतु इनके उदय विच्छेद यहीं पर हो गया, ज्ञान और दर्शन अंतराय। देखो लोभ का कहां रुक गया है? दसवें में। मोहनी का वहां खत्म हो गया, हम क्षपक श्रेणी की अपेक्षा कहेंगे, वो तो अभी मोह नष्ट हो गया, और बारहवें में ये तीन घाती नष्ट हो गए, यानी चारों घाती कर्म का क्षय करके तेरहवें में चले जाएंगे ना, तो इसका उदय यहाँ तक है, ये बता रहे। बारहवें में इनका बंध नहीं था, अंतिम बंध कहाँ हुआ था? दसवें के अंत में, ज्ञानावरण का वो अंतर्मूर्त वाला बंध हुआ था, परंतु उसका उदय यहाँ चलेगा। अब देखो तेरहवें गुणस्थान की उदय विच्छेद बता रहे हैं। औदारिक तेजस और कारमान शरीर, हम हमेशा नाम कर्म बताए तो पहले गति बताते हैं, जाति बताते हैं, परंतु मनुष्य गति और पंचेंद्रिय जाति के उदय विच्छेद नहीं होगा यहाँ पर, वो तो 14वें गुणस्थान वाले को भी उदय है, इसलिए शरीर से शुरू किया। तो औदारिक तेजस कारमान शरीर, छह संस्थान, कितने बताए? सहनन का नियम है, संस्थान का नहीं है, समचतुरस्र हो या कौन से, यदि तीर्थंकर होते तो उनके समचतुरस्र का ही उदय है, परंतु सामान्य केवली में को छह संस्थानों में से कोई भी संस्थान हो सकता है। छह संस्थानों के नाम याद है कि भूल गए? बोलो बोलो। समचतुरस्र नगरोध परिमाण स्वाति कुब्जक वामन हुंड निगोदीय संस्थान नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये जो प्रकृति अगर याद नहीं होगी ना, वो पंचलब्धि पुस्तक होगी अब, तो उसमें वो सारा लिस्ट बताइए, एक बार वो लिस्ट याद हो जाए तो बारंबार ये प्रकृतियों के नाम तो आने वाले हैं, है ना। तो देखो अभी तेरहवें गुणस्थान की बात पढ़ रहे, औदारिक तेजस कारमान शरीर, इनके उदय यहाँ तक ही, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय यहाँ तक है, कारमान शरीर नाम कर्म का, तेजस शरीर नाम कर्म का, तो बंध कहाँ तक है? तेरहवें के अंत तक, क्योंकि ये शरीर नाम कर्म के उदय में कर्म और नो कर्म का ग्रहण होता है, योग इनके कारण है, ये सहयोगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन शरीर नाम कर्म के उदय से उनको योग है और उसके कारण वो सहयोगी कहलाते हैं। अयोग केवली गुणस्थान के इनका उदय रुक गया है, तो ना शरीर के परमाणु का ग्रहण होगा ना कर्मों का होगा, तो इनका उदय रुक गया। छह संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषद नाराच सहनन, देखो सहनन का उदय यहाँ तक बताया है, क्योंकि उस जाति के परमाणु का ग्रहण भी हो जाता है ना, तो ये सहनन का उदय यहाँ पर है। शरीर तो रहेगा उनका, जो बना बनाया शरीर है, शरीर का सहनन तो कायम रहेगा 14वें गुणस्थान में भी, पर सहनन नाम कर्म का उदय रुक गया यहाँ पर। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सारे जो शरीर संबंधी परमाणु जो ग्रहण होते हैं उसकी बात है, इनका उदय रुक गया है, इसलिए कि शरीर वर्ण रहित हो जाता है, ऐसा थोड़ी है, जो शरीर है वो तो बना है वहां पर, औदारिक शरीर तो है ऑलरेडी, पर नए परमाणु का ग्रहण रुक जाएगा, ये सारे उसके, हाँ उस जाति के परमाणु ग्रहण होते हैं उसमें इसका निमित्त बनता है। अगुरु लघुक, उपघात परघात उच्छ्वास, क्योंकि देखो श्वास का निरोध हो जाता है इस केवली के अंत समय में, उच्छ्वास नाम कर्म का भी उदय, यानी श्वासोच्छ्वास तो 13वें में है, 14वें में है भी नहीं है। दो विहायोगतिया, जो प्रशस्त अप्रशस्त केवली के भी इनका उदय हो सकता है, तीर्थंकर को नहीं, अन्य केवलियों को अप्रशस्त विहायोगति हो सकती है। प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर, देखो ये तो ध्रुवोदयी प्रकृति है ना, दोनों का एट ए टाइम उदय रहता है हमेशा ही, परंतु उनका उदय यहाँ तक है, स्थिर और अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देखो दुस्वर का भी उदय हो सकता है केवली को सामान्य, तीर्थंकरों के तो सारी शुभ प्रकृतियों का सुस्वर का उदय होगा इस तरह से। और निर्माण, इन 29 प्रकृतियों का उदय उच्छेद संयोग केवली गुणस्थान में होता है। वेदनीय का इसलिए नहीं लिया, किसी को साता का उदय है, किसी को असाता का उदय है, इसलिए उसकी टोटल विच्छेदी नहीं बता सकते। एक जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो जिसका तो साता का यहाँ उदय विच्छेदी, उसको असाता का उदय बताएंगे। अन्य नाना जीवों की अपेक्षा ये दोनों ही है, इसलिए उसको अंत में गिनते हैं, इसलिए दो प्रकार से कहने में आता है, कहीं कहीं एक का यहाँ बताते हैं और बाद में दूसरे का बताते हैं, उसको उदय और अनुदय रूप प्रकृति ऐसा कहेंगे। देखो कितने हो गए, 29। हाँ बताएंगे आप 29। हाँ औदारी की तेजस कारमान शरीर, शरीर के हाँ 6 संस्थान, औदारी अंगोपांग, स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, वो चार लेने। हाँ वो स्थिर प्रत्येक शरीर, त्रस बादर पर्याप्त को छोड़ा है, वो चार में से उसको छोड़ा है, प्रत्येक शरीर सहनन रह गया था बीच में। हाँ वो स्थिर, हाँ
निर्माण
निर्माण लास्ट में, ये तो संयोग केवली गुणस्थान में होगा, ये 29 कह दी यहाँ पर। हाँ दो विहाय गति भी रह गया। अब आगे बढ़ते, दो वेदनीय, ये नाना जीवन की अपेक्षा बता रहे हैं ना, किसी के साता का उदय, किसी के असाता का, ये हो सकता है। मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस बादर पर्याप्त, सुभग आदेय यशस कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, इन 13 प्रकृतियों का उदय विच्छेद अयोग केवली गुणस्थान में होता है। यह उपसंहार गाथा। अब एक जीव की बात करेंगे तो किसी के एक एक का ही उसका उदय हो सकता है, उसका जिसका जो अपना है, असाता का उदय है तो उसके साता की उदय विच्छेदी वही हो जाती, नहीं के बारे फिर भी है उसका उदय है ना, उसका अनुभव कितना है उसकी बात नहीं चल रही है, यानी किसी जीव को असाता का ही उदय है थ्रू आउट, उसके उदय की विच्छेदी नहीं कहेंगे वहां 13वें में, उसकी सत्ता की विच्छेदी हो जाएगी उपांत समय में, यानी वो सत्ता में पड़ा है उसका साता वेदनीय, असाता का उदय चल रहा है, और साता का क्षय कहाँ होगा तो 14वें के उपांत समय में, और अंतिम समय में असाता का क्षय हो जाएगा। नहीं के बराबर ही है ना, परंतु वो परमाणु असाता रूप से तो असाता कहेंगे, अब असाता असाता का फल क्या होता है, तो इंद्रिय जन्य सुख दुख होता है, वो कहाँ है उसके ख्याल में है बात। और वो पहले से कितना हीन 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 अनुभव होते 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 ऐसा चल रहा है, और उसके तो साता आता है और चला जाता है, उसमें तो अनुभव नहीं पड़ रहा है, पहले जो पड़े थे साता सत्ता में उसकी जो निर्जरा हो रही है उसमें तो बहुत अनुभाग है, इसलिए उसका साता रूप से उदय कहीं कहीं साता रूप से उदय होकर चलती है, परंतु वो तो वहां उसका कोई फल नहीं है, बस इतना ही बताना है। हाँ ये 13 प्रकृति का उदय का विच्छेद यहाँ हो गया, उदय रूप तो यहाँ 12 ही होती है एक जीव को, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तीर्थंकर को लेते हुए उदय कितने का होगा, दोनों का उदय एक जीव को नहीं होगा, हाँ, किसी अल्टरनेटिव यानी वो भी अंतर्मुत में नहीं बदलेगा। जिसको असाता का उदय थ्रोट असाता का ही उदय हो रहा है। हाँ, ये चौदहवें का अंतर्मुत छोटा है ना, वो जो जिसका जो उदय है वो उदय रूप रहेगा। क्या चौदहवें गुण स्थान में वो साता है किसी के या किसी के असाता है, बस इतनी। हाँ, असाता ही रहेगा ना।
नहीं,
इतना थ्रू आउट रहेगा असाता। नहीं, उसका तो बंद थ्रू आउट साता का, ये तो नक्की है ना।
बंद साता है, उदय तो दोनों का होगा ना।
अभी तीर्थंकरों के तो केवल साता का ही उदय है ना।
बाकी तीर्थंकरों को छोड़ के
नहीं, नहीं नहीं, उनको ये कहना है। परंतु
हमने देखा था ना, छह मास से,
छह मास तो उसके लिए, देवों के लिए, सहस्रार के देवों के लिए। और असाता का उदय उत्कृष्ट की बात है। तो इनका उसमें भी बदलेगा शायद,
क्योंकि देवों की अपेक्षा हम लोग छह मास देखते हैं, बाकी तो हम लोग ऐसे देखते हैं अंतर्मुख।
नहीं तो केवली का कभी बताया नहीं उन्होंने,
नहीं अलग से बताया नहीं है।
इसका अर्थ वो पलटेगा। अभी आगे देखते हैं, यहाँ उपसंहार गाथा बताएंगे। छह नंबर के ऊपर पढ़ते हैं। दस चतुरी सत्तारस अठयत पंच चेव चौरोय छक्क एक दुग दुग चौदस उगतीस तेर सुदय भी। दस आपको गुणस्थान बताना है, पहला। चार
दूसरा,
एक तीसरा, सत्रह चौथा, आठ पांचवा। पांचवे के आठ बताएंगे। हाँ, प्रत्याख्यान चार। हाँ, तीरन चाहिए तीरन जगति निज गोत्र। फिर पांच, छठवें गुणस्थान में पांच है। बोलो, तीन निद्रा आहार विवेक। हाँ, फिर सातवें गुणस्थान की चार कौन से, तीन सहनन और सम्यक प्रकृति। आठवें के छह, ये तो आसान है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। हाँ, ये फिर छह, नौवे गुणस्थान में तीन वेद और संज्वलन की तीन क्रोधमान माया। दसवें में एक लोभ, संज्वलन लोभ। ग्यारहवें की दो कौन सी, नहीं दो सहनन, और ये दो और चौदह है वो बारहवें की है, दोनों मिलकर। वो दो चौदह जो लिखा है ना, वो दोनों मिलकर बारहवें की है। दो और चौदह लिखा है ना, तो दो में निद्रा और प्रचला लेना, और चौदह में पांच ज्ञान आवरण, चार दर्शन, पांच अंतर है। उन्तीस
मनुष्य गति।
हाँ, मनुष्य गति यहाँ नहीं लेना। उन्तीस में औदारिक तेजस कारमान वगैरह वो लेना है। यहाँ पर छह संस्थान अंगोपांग वो बाकी सब हमने देखे ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह, ये यहाँ पर लेना। ये तेरहवे गुणस्थान की, और तेरह चौदहवे गुणस्थान की। जैसे दो वेदनिया, देखो चौदहवे गुणस्थान में क्या है, कितने कर्म बाकी है, चार आघाती बाकी है ना। तो कैसे याद रखना, मैं बता रही हूँ। चार आघाती तो मालूम है, वेदनी आयु नाम गोत्र, तो तीन कह दो ना। वेदनी यानी एक दो वेदनी, किसी को कौन से, इसलिए दो लिए बरोबर। और फिर मनुष्य आयु है और उच्च गोत्र ही है, तो तीन बता दिए। अब बाकी जो यानी ये चार हो गए ना, तीन बता दिए ने, वेदी ने दो लेके चार हो गए, अब कितने रह गए? नौ रह गए, नौ ही रह गए। तो उसमें अभी बता दो ना, जो मनुष्य गति है, पंचेंद्रिय जाति है, त्रस बादर पर्याप्त है, है ना, और फिर सुभग आदेय यशस के, और कोई होता है तो तीर्थंकर, जो हो गए उसके लिए ये नौ हो गए। हाल में आई बात, यहाँ एक प्रकृति बाकी है जो अंत में नष्ट होती है मनुष्य गत्यानुपरी, पर उसका उदय नहीं है, उसका उदय तो चौथे तक ही है, सत्ता में है। अभी तो हमने सत्ता को टच नहीं किया, सत्ता की विच्युति नहीं देखी है, परंतु सत्ता की भी विच्युति होती है, जब तक क्षय नहीं होता तब तक बनी रहती है सत्ता। हाँ, तो इस तरह हमने देखे, इस प्रकार क्रमशः मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थानों में उदय विच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या है। इस प्रकार उदय विच्छेद को कहकर, अब किन प्रकृतियों का बंध उदय के विच्छिन्न होने पर भी होता है, क्या कहते हैं, उदय रुक गया फिर भी कौन से प्रकृतियों का बंध होता है, जैसे हमने आहार कहार कंगोपों की बात की थी, किन प्रकृतियों का उदय बंध के नष्ट होने पर भी होता है, तो बहुत सारी प्रकृतियां हैं, और किन प्रकृतियों का बंध व उदय दोनों साथ ही विच्छिन्न होते हैं, इस बात को कहते हैं। देखो स्पेशली गुणस्थानों की जो रचना है वो तो मोहनीय के आधार से है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वगैरह वगैरह जो है ना, वो अपने अपने वो साथ साथ उसकी उदय और बंध विच्छित होती है। हाँ, वो दसवें गुणस्थान में बंध नहीं है लोभ का, परंतु उदय है, बस इतनी बात वहाँ। और वेदों के बारे में ये लागू नहीं होता है, यानी नौ कषाय के बारे में ये रूल नहीं लागू, मिथ्यात्व और ये जो कषाय है ये लोभ को छोड़कर बाकी उसमें ये बात लागू होगी। देखो अभी आगे बढ़ते, वह इस प्रकार है, देवायु देवगति वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग, देवगति प्राज्ञान पूर्वी, आहारक शरीर आहारक शरीर अंगोपांग और अयशस कीर्ति, इन आठ प्रकृतियों का प्रथम उदय का विच्छेद होता है, पश्चात बंध का। देखो अभी हम एक एक की बात करते हैं। देखो अभी हमने ये जो सारी बातें हैं, देवायु देवगति वैक्रिक शरीर अंगोपांग वगैरह, इसका उदय कहाँ तक देखा?
चार तक,
चौथे तक,
चौथे तक,
और आहारक शरीर अंगोपांग का
छठे
तक, और यशस कीर्ति का उदय,
यशस कीर्ति का
उदय चौथे तक। तो ये क्या क्या प्रथम उदय का विच्छेद होता है, अब उनका बंध एक एक का बताओ मुझे, ब्रह्मा आप बताएंगे। देवायु के बंधे विच्छित्ति कहाँ है? सातवें में है। देवगति वैक्रिक शरीर अंगोपांग देवगत्यानुपूर्वी आहारक शरीर अंगोपांग, इनके बंध विच्छित्ति कहाँ है? आठवें में, आठवें के छठे भाग तक बनती है ना, और अयशस कीर्ति का बंध कहाँ तक है? छठे तक है, ख्याल में है ना। तो इन आठ का प्रथम उदय का विच्छेद होता है पश्चात बंध का, इन्हें ऊपर के गुणस्थानों तक बनती है। यहाँ उपसंहार गाथा, ये सात नंबर की गाथा पहले ऊपर पढ़ते हैं। देवाउ देव चौ काहार दुअम च अस समष्ठन्नम अजस अजस समठन्नम पढ़म सदी पच्छा बंधो मुने यो। इसमें बहुत सारी जो घोटाले है, अजस करना, अजसम अठन्नम ऐसा है उसका, पढ़मम उदवो यानी पहले उदय विनश्यति, पहले उदय विनश्य होता है, पच्छा बंधो और मुणे यौवो करना, मुणे ये वो ने मुणे यौवो यानी जानो, नीचे उसका अर्थ देखा है। देवायु देव चतुष्क, देव चतुष्क कहने से गति गात्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर अंगोपांग, उसको देव चतुष्क कहेंगे। अर्थात लिखा है आगे, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैकृत शरीर और वैकृत शरीर अंगोपांग, तथा आहारक शरीर आहारक शरीर अंगोपांग एवं अयशस कीर्ति, इन आठ प्रकृतियों का पहले उदय नष्ट होता है। हमने ये अयश का देखा था, चौथे में उदय नष्ट होता है, बंती छठे तक, पश्चात बंद विच्छित्ति होती है, बंद के बाद कॉमा नहीं चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अभी एक साथ उदय विच्छित्ति और बंद विच्छित्ति किसके होती है वो बताएंगे यहाँ पर, पहले गाथा बाद में बताइए ना। हाँ, पहले उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। मिथ्यात्व, चार अनंतानुबंधी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, तीन संज्वलन। पुरुष वेद, देखो पुरुष वेद का उदय कहाँ तक है, नवे के पहले भाग तक, और बंध जहाँ उदय है वहां तक बंध है। परंतु स्त्री नपुसक वेद का उदय कहाँ तक है, तो नवयुग के पहले भाग तक, पर उसका बंध कहाँ है, नपुसक वेद का तो बंध विच्छित्ति पहले में और स्त्री वेद की दूसरे में, तो समान में नहीं लेना उनको। हास्य रति भय जुगुप्सा, देखो हमने देखा था ये जो चार सॉरी छह नौ कषाय का उदय आठवें के अंतिम समय तक है, और इन चार का बंध भी अंतिम समय तक है। रति शोक का उदय आठवें तक है, परंतु बंध छठे में रुका था, वो प्रकृतियां बाद में बताएंगे। देखो मोहनीय में से किस किस को लिया, मिथ्यात्व और ये बारह कषाय, फिर तीन संज्वलन लिए है ना, पंद्रह कषाय, पुरुष वेद हास्य रति भय जुगुप्सा, ये पंद्रह, ये पांच, बीस और इक्कीस तो इसके हो गए। अब एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय जाति, अभी हमने देखा ना मिथ्यात्व में उसका उदय है, मिथ्यात्व में ही बंद है। मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी, उसका बंद कौन करेंगे, देवनार के करेंगे, चौथे गुणस्थान वाले भी करेंगे, और उसका उदय भी चौथे तक ही है। वो बांधने वाले स्वामी तो उदय वाले वो मत ले लो, ख्याल में है ना बात। हाँ, इन जनरल उसका बंद कहाँ तक है और उदय कहाँ, ये बात है। आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये भी पहले गुण स्थान में उदय योग्य और बंध योग्य है। इन 31 प्रकृतियों का बंध व उदय दोनों साथ विच्छित्ति होते हैं, इसके लिए गाथा बता रहे। आठ और नौ दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का एक साथ अर्थ बताया। मिच्छत्त भय दुगुंछा हसर ये पुरी सथावरा दावा सुमजाई चौकम साहारणयम अपच्यत्तम पन्नरस कसाया विणु लोहेण एकेण आनुपूवीय मनुषाणम एदासिम समगम बंधोद उच्छेदो। यानी समान काल में बंध और उदय का उच्छेद एक साथ होता है। नीचे फिर उसका अर्थ देख रहे हैं, जिस ऑर्डर से गाथा में लिखा है वही से बता रहे। मिथ्यात्व भय जुगुप्सा हास्य रति पुरुष वेद स्थावर आतप सूक्ष्म एकेंद्रिय आदि चार जाति साधारण अपर्याप्त संज्वलन लोप के बिना पंद्रह कषाय और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। ऊपर लिखा था ना अनुपूर्वी या मनुषाणम, इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद और उदय विच्छेद साथ हो जाता है, साथ ही होता है, ही है वो, हो नहीं है। अब ऐसे बता रहे कि पहले जिनका बंध नष्ट होता है बाद में उदय नष्ट होता है। पांच ज्ञानावरण, बंध कहाँ, अभी आपको बताना है बंध कहाँ वो नष्ट होता है। उदय दसवें तक बंध है, उदय बारहवें तक है। नौ दर्शनावरण में आपको क्रम से बताना है, उसका विभिजन करके बताओ। स्त्यान वृद्धि आदि तीन कहाँ तक बंद है, उदय छठे तक है।
नहीं बंद थे।
हाँ मैंने छठा ही सुना, आई सुनाई नहीं दिया। हाँ बंद दूसरे में दूसरे तक है और उदय छठे तक है। उदय बाद ऊपर तक उदय नहीं है, बत बता रहे। तो उसमें से तीन बता दिया, निद्रा प्रचला बंद कहाँ है, उदय कहाँ तक है, आठवें के पहले भाग में बंद विच्छित्ति है और उदय अपने उपांत समय में देखा बारहवें के उपांत समय है ना, और चार दर्शनावरण बंद कहाँ तक, दसवें तक बंद और बारहवें तक उदय है ना, ये दर्शनावरण हो गया। दो वेदनीय असाता का बंध, हाँ छठे, और उदय चौदहवें तक, साता का बंध तेरहवें, उदय चौदहवें तक। संज्वलन लोभ नौवे तक बंद, हाँ नौवे तक बंद, दसवें तक उदय। स्त्री वेद और नपुसक वेद, स्त्री वेद दूसरे में बंद और नौवे तक उदय, नपुसक वेद पहले ही में ही बंद है और नौवे तक उदय है। और अतिशोक छठे बंद विच्छित्ति और उदय आठवें। नरकायु पहले और चौथे, नरकायु का बंद पहले में हो सकता है, उदय चौथवे तक। तिर्यकायु दूसरे तक बंद है और
पांचवे तक,
पांचवे तक उदय है। मनुष्यायु
चौथे और चौदहवे तक,
हाँ चौदहवे वाला बंद है, मनुष्य देव और वो बंद करेंगे ना, मनुष्यायु का बंद कर सकते हैं, तो चौथे तक बंद करेंगे,
चौदह
और चौदहवे तक उदय है। नरक गति जैसे पहले हमने नरकायु की देखी बात, तो पहले और चौथे। तिर्यक गति दूसरा और पांचवा। मनुष्य गति चौथा और चौदवा। पंचेंद्रिय जाति
आठवा और चौदवा,
देखो आठवें तक बनती है और उदय चौदहवें तक है। औदारिक तेजस कारमान, अब औदारिक शरीर कहाँ तक बनता है, चौथे तक, क्योंकि देव नार के बांधेंगे ना, और उदय उसका तेरहवें तक, बराबर। तेजस कारमान का बंध आठवें
तक
और उदय उसका तेरहवें तक है। छह संस्थान को बताना है, तेजल आपको याद है, देखो असंप्रदाय का सुहान सहनन है, कुंडक संस्थान पहले में और उदय
तेरहवें तक,
छह संस्थान तेरहवें तक, और बीच वाले चार संस्थानों का बंद विच्छित्ति दूसरे में है ना, नगरोत परिमंडल वगैरह, उदय तेरहवें में। और समचतुर्थ संस्थान कहाँ तक बंद है, हाँ आठवें तक बंद है, देवगति के साथ बंद होता है और उदय तेरहवें तक है। ये छह संस्थान गए। औदारिक शरीर अंगोपांग, वो औदारिक शरीर के साथ लेना उसको, बंद चौथे तक और उदय तेरहवें तक। छह सहनन, देखो अभी छठा सहनन पहले में उसका बंद विच्छित्ति है और सातवें में उदय विच्छित्ति है, दूसरे दो सहनन उसका भी ऐसे दूसरे में और सातवें में,
दूसरा दो सहनन
वो दूसरे से लेकर ग्यारहवें तक,
हाँ।
और वज्रषभ नारायण सहनन है वो
चौथे और तेरहवें,
हाँ चौथे तक बनती है ना, क्योंकि औदारिक शरीर के साथ बंधेगी चौथा और तेरहवा। वर्णादि चार, देखो बंद विच्छित्ति आठवें में होती है और उदय हमने तेरहवें तक देखा अभी। नरक गत्यानुपूरी नरक गति के समान पहला और चौथा। तिर्यक गत्यानुपूरी दूसरा और चौथा। अगुरु लघु आदि चार, हाँ अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास आठवें तक बनती है और
तेरहवें तक,
तेरहवें तक, तेरहवें में उसका उदय विच्छित्ति है। उद्योत दो और पांच, दो विहाय गति में आपको अलग अलग बताना है। अप्रशस्त विहार गति का बंध
दूसरे
तक है
और तेरवे तक
उदय तेरवे तक है। प्रशस्त विहार गति
आठवें
तक बनती है और तेरवे तक उदय है। त्रस बादर पर्याप्त
आठवें और तेरवे तक
आठवा और चौदवा
चौदवा
प्रत्येक शरीर नहीं प्रत्येक शरीर का तेरहवें तक ही उदय है। प्रत्येक शरीर का उदय कहो तो शरीर के परमाणु का ग्रहण हो जाएगा है ना।
हाँ
तेरहवा प्रत्येक शरीर हाँ बंध आठवा उदय तेरह। अभी स्थिर अस्थिर
सभी के बारे में ऐसे ना
सभी के बारे में ऐसा नहीं है। अस्थिर का छठे है और स्थिर का आठवें तक है। बंद में डिफरेंस है उदय तेरवे तक है।
शुभ शुभ
देखो इसमें से स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय इनका जो बंद है वो आठवें तक है और उदय तेरवे तक है। अस्थिर अशुभ और अनादेय
छठे तक बंद है। नहीं हाँ। अनादेय का दूसरे तक है
दुर्भग अनादेय और वो तो दूसरे में ले लेना। दुर्भग दूसरा अनादेय है ना वो दूसरे में लेना।
एक गोत्र भी दूसरे में लेना
हाँ।
दुर्भग का पांचवे तक है
ना लिया ना स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ चौथे में है। दुर्भग अनादेय अयशस कीर्ति चौथे में है चौथे तक उदय है। हाँ नहीं सुस्वर दूसर भी है
दोनों का है
केवल दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति चौथे
तक
चौथे तक उदय है। फिर से सुस्वर का सुनो जरा उनको समझने दो। सुस्वर का बंध कहाँ तक है
आठवें
तक है उसका उदय तेरहवें तक। दुस्वर का बंध दूसरे तक उदय तेरहवें तक। आदेय का बंध है आठवें तक
उदय तेरहवें तक
उदय चौदहवें
तक।
अनादेय का दुर्भग अनादेय का बंध दूसरे तक है
चौथे तक
और उसका अनादेय का उदय चौथे तक है। अब यशस कीर्ति का बंध की विच्छित्ति दसवें में
उदय
और उदय चौदहवें तक है। निर्माण का बंध विच्छित्ति आठवें में है उदय तेरहवें। तीर्थंकर की बंध विच्छित्ति आठवें में उदय चौदहवें तक है। नीच गोत्र के बंध विच्छित्ति दूसरे में है उदय पांचवे तक है। उच्च गोत्र की बंध विच्छित्ति दसवे उदय तो चौदहवे तक है। और पांच अंतराय
दसवे और
हाँ दसवे तक बनती है बारहवे तक उदय है। इन 81 प्रकृतियां का पहले बंध नष्ट होता है पश्चात उदय। यानी 31 प्रकृतियां पहले उदय बंदर दोनों साथ थे वहां 31 लिया। ये साथ साथ होने वाली कितनी 1 2 3 4 5 6 7 हाँ ये तो 31 ही बताई साथ साथ वाली 31 थी और ये 81 थी। और पहले कितने बताए हमने 8
पहले
बंद विच्छ हाँ
ना पहले उदय रुक जाता है
पहले उदय निष्ठ वो 8 थी
और बंद
एक साथ होने वाली 31 थी 39 हो गई 8 29 और 81 81 120 हो गई ना बंधने वाली। अब सम्यक प्रकृति और वो तो बंधने वाली है ही नहीं इसलिए उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। अब दसवां नंबर का सूत्र, पौत्तव से साओ एगा सीधी हवंती पयडियो ताणम बंदुच्छेदो पूवम पच्छोद उच्छेदो। उन्होंने गिना ही नहीं, गाथा में तो केवल ऐसा ही लिखा है, पूर्वोक्त प्रकृतियों से शेष, पूर्वोक्त ने 8 और 31 को छोड़कर, 39 को छोड़कर जो 81 प्रकृतियां रहती है उनका बंध विच्छेद पहले और उदय विच्छेद पश्चात होता है। शेष प्रश्नों का अर्थ यथावसर कहेंगे। पहले में पहले जो हमें पूर्व में होता है के बाद में होता है, इस प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने दे दिया, कौन से प्रकृतियों का बंध पहले रुकता है, कौन सा उदय पहले रुकता है, कौन से एक साथ रुकते हैं। पहले 8 बताई, फिर 31 और फिर 81। अब 6 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। मिच्छा दिट्ठी पहुरी जाव सुम सांप्राय शुद्धि संजदेशु व समा खवा बंधा। सुम सांप्राय शुद्धि संजद्धाये चरिम समयम गंतुण बंधो वोचिज्जदि एदे बंधा अवशेषा बंधा। देखो यहाँ बंध केवल दसवें तक ही बताया है, एक अपेक्षा है, क्योंकि जहाँ स्थिति अनुभाग नहीं बनते हैं उसको अबंधा कह दिया उन्होंने। 11वें 12वें 13वें वाले को इसमें नहीं गिना है यहाँ पर, क्योंकि 10वें तक ही बताया ना, 10वें के अंतिम समय तक ही बंधक है, बस इतनी बात बताई उन्होंने। मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत उपशामक व क्षपक तक, अच्छा पूर्वोक्त प्रकृतियों की बात बताई, अच्छा अच्छा उन प्रकृतियों की बात बताई, यहाँ साता को वहां उसमें लिया ही नहीं था इसलिए उसकी बात नहीं है, बराबर है। देखो पेज नंबर 7 पर प्रश्न पूछा गया था, यानी वो सातावेदनी की बात ही नहीं थी इसलिए उसको 11वां 12वां 13वां को छोड़ दिया। वहां क्या 5वें नंबर का सूत्र में क्या पूछा था, 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण यशस कीर्ति उच्च गोत्र और 5 अंतराय के बंधक कौन है और अबंधक कौन है। अभी उसमें आपको सीमा बताने कहां से कहां तक बनती है, बस इतनी बात है। तो मैंने जो अनुभाग स्थिति की बात की वो यहां नहीं लागू हो रही है, प्रकृति बंधक की बात चल रही है। साता उसमें प्रश्न में पूछा ही नहीं था इसलिए वो बात के 3 गुण स्थान नहीं लिए, और ये कहां तक बनते तो 10वें तक बनते हैं। तो क्या ऐसा है कि मिथ्या दृष्टि नहीं बांधता और आके ऊपर के ही बांधते, ऐसा है मिथ्या दृष्टि भी उनको बांधता है क्या? मिथ्या दृष्टि उच्च गोत्र यशस कीर्ति को बांध सकता है कि नहीं बांध सकता है? बांध सकता है। इसलिए हाँ, इसलिए उत्तर क्या दिया फिर से पढ़ते। मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत उपशामक व क्षपक तक पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के बंधक है। बंधक है कहने से वो तो सारे उसको हर समय बंद कर रहे हैं ये उसका अर्थ नहीं है, बंद कर सकते हैं कि नहीं सकते उसकी बात। अब उसमें जो कुछ ज्ञानावरण तो सारे ही बंधक हो गए, यानी उसके अबंधक कोई नहीं हो, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। सूक्ष्म सांप्रायिक काल के अंतिम समय में जाकर इन प्रकृतियों का बंध विच्छिन्न हो जाता होता है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। शेष में अभी 11वें 12वें वगैरह ऊपर के गुणस्थान ले लो, वो अबंधक है। इस हाँ इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वो इस प्रकार है, मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक तक इस वचन से बंध अध्वान ज्ञापित किया गया। पहले पूछा था बंध अध्वान बंध की सीमा, यही उसी पेज पर है, अभी पेज नंबर अपना 13 पर चल रही बात, 6 नंबर सूत्र का अर्थ देख रहे थे। यहाँ क्या बताया कि पहले गुणस्थान से लेकर 10वें के अंत तक उपशामक और क्षपक दोनों ले लिए, इस वचन से बंधाध्वान ज्ञापित किया है, यानी बंध की सीमा। बंधाध्वान का अर्थ हमने पहले देखा था, बंध की सीमा। पेज नंबर 8 पर यह बात लिखी थी, देखो चौथी लाइन में लास्ट में बंधाध्वान कितना है पूछा था, वहां क्या लिखा था, अर्थात बंध की सीमा किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक है। ये जो 16 नंबर का प्रश्न था ना, उसके यहाँ सूत्र में उसकी सीमा बता रहे हैं, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बनता है। ये बंधक है, शेष अबंधक है, इससे बंध का स्वामित्व ज्ञापित किया। क्या क्या, पहले बंधाध्वान समझ में आया, फिर बंध का स्वामित्व बता रहे। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत काल के अंतिम समय में जाकर बंध विच्छिन्न होता है, इससे भी क्या चरम समय में बंध विच्छिन्न होता है, इस पृच्छा का प्रथम और अचरम समय में प्रतिषेध मुख से प्रत्युत्तर दिया गया है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी हम वहां प्रश्नों के नंबर डालेंगे तो ख्याल हो जाएगा। बंधाध्वान था 16 नंबर का प्रश्न, मैंने प्रश्न 16 था, बंधाध्वान के लिए हम कहें 15 प्रश्न 16 का उत्तर आ गया उसमें अंदर, पेज 8 के प्रश्न 16 का यहाँ बंधाध्वान समझ में आया। बंध का स्वामित्व ज्ञापित किया, वो स्वामित्व में सभी बातें आ गई उसकी, क्योंकि स्वामित्व की पूछा, ये प्रश्न अलग से बताए थे, उसमें स्वामित्व के लिए अलग सा नंबर नहीं बताया था। अब कहते आगे का प्रश्न था ना 17 नंबर का, क्या अंतिम समय में होता है, क्या प्रथम समय में होता है या अप्रथम में होता है, यानी 17, 18 और 19 प्रश्न में से 18 और 19 उन्होंने कैंसिल कर दिया। 17, 18, 19 प्रश्न में से अठारह और उन्नीस का निवारण हो गया, यानी 17 वाला है ये ख्याल में, क्या अंतिम चरम में होता है। शेष पृच्छाओं का निर्णय यहां सूत्र में नहीं किया गया है, प्रश्न तो 30 पूछे गए थे। हाँ, क्या कितना, 17 देखो ना, 17 देखो वहां क्या लिखा है, 17 क्या अंतिम समय में बंध की विच्छित्ति होती है, क्या प्रथम समय में होती है, क्या अप्रथम में होती है, अप्रथम में अचरिम में होती है, तो 17, 18, 19 का यहाँ उत्तर मिल गया। उसमें से ऑप्शन पूछा गया था, यानी ये 16 नंबर का प्रश्न उत्तर दे दिया, 17, 18, 19 का उत्तर दे दिया, यानी 18, 19 नहीं होता ये सब सिद्ध कर दिया। अब अन्य प्रश्नों का उत्तर तो नहीं मिला है, इसलिए देशामर्शक सूत्र, यानी इसमें कुछ प्रश्नों का जवाब स्वयं में आ गया है, और जिसका नहीं आया है वो अभी बताएंगे, बताएंगे ना अभी। हाँ, पहले तो उन्होंने इन जनरल सब बातें बताई थी, वो उदय विच्छित्ति सबके टोटल के लिए बताई थी, अभी सूत्र में जो अर्थ भाषित होता है उसको यहाँ बताएंगे। बंधाध्वान ना वो 15 नंबर का नहीं था, वो 16 नंबर का था। देखो प्रश्न के पश्चात नंबरिंग दिए हुए, यहाँ की पद्धति अलग है, हम क्या करते हैं नंबर देके आगे वाक्य लिखते हैं, यहाँ वाक्य लिख के फिर नंबर देते हैं। अब शेष लास्ट लाइन 13 पेज पर, वो अभी देशामर्शक सूत्र है ना, वो अभी बताएंगे। हाँ, शेष पृच्छाओं का निर्णय यहाँ सूत्र में नहीं किया गया, नहीं सूत्र में डायरेक्ट तो नहीं बताया, इसीलिए यह देशामर्शक सूत्र है, यानी थोड़ा बताएं, थोड़ू लख्यू घणु जानजो, ये जानजो अवे। और देशामर्शक होने से, श के ऊपर रफार देना, देशामर्शक होने से यहाँ लीन अर्थात अंतर्निहित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं, यानी बाकी प्रश्नों के जवाब यहाँ स्वयमेव देंगे आचार्य। वह इस प्रकार है, अभी एक एक नंबर का, जो एक नंबर का क्या प्रश्न था, क्या बंध पूर्व में उच्छित्ति होती है, यहाँ थे तो यहाँ अभी वही बता रहे, अभी हम प्रश्न इसमें डालेंगे। प्रश्न एक क्या था, क्या बंध पूर्व में विच्छिन्न होता है, क्या उदय पूर्व में विच्छिन्न होता है, या क्या दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं। ये तीन प्रश्न हो गए ना, एक दो और तीन, तो प्रश्न एक, प्रश्न दो और प्रश्न तीन। इन तीन पृच्छाओं का उत्तर कहते हैं, इन 16 प्रकृतियों का बंध उदय विच्छित्ति से पहले सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में विच्छिन्न होता है, तत्पश्चात उदय की विच्छित्ति होती है। क्योंकि अब उदय में अलग अलग बता रहे, 5 ज्ञानावरणीय, 4 दर्शनावरणीय और 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों का क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में तथा यशस कीर्ति व उच्च गोत्र, इन 2 प्रकृतियों का अयोग केवली के अंतिम समय में उदय विच्छेद देखा जाता है। अब क्या सोदय से, अब आगे के प्रश्न जो है ना, क्या अपने उदय के साथ बंध होता है, यानी प्रश्न नंबर 4 है, क्या पर के साथ होता है या क्या पर स्वपर दोनों के साथ होता है, 4, 5 और 6 नंबर के प्रश्न है, इन्हें प्रश्न 4, 5 और 6 क्या है वे, क्या सोदय से, सोदय से ने वो सेम उसी प्रकृति के उदय में क्या वो बनती है, ये प्रश्न है। ज्ञानावरण के उदय में ही वो बनती है क्या, ये प्रश्न है। क्या परोदय से या क्या सोदय परोदय से इनका बंध होता है, इस पृच्छा का आश्रय कर उत्तर कहते हैं। अब यहाँ पहले इस संबंध से स्वोदय परोदय और स्वोदय परोदय से बंधने वाली प्रकृति का निरूपण करते हैं। जैसे पहले प्रश्न पूछे गए थे, पहले बंध विच्छित्ति थी कि उदय विच्छित्ति होती है, तो मालूम नहीं था, इसलिए पहले उदय विच्छित्ति की बात सिखाई उन्होंने और फिर कंपैरिजन करके बताई। अब ये स्वोदय से बंधने वाली कौन सी है, परोदय से बंधने वाली कौन सी है और स्वोदय परोदय से बंधने वाली कौन सी है, पहले ये सिखाएंगे, बाद में उसका उत्तर देंगे। वह इस प्रकार है, नारकायु देवायु, क्या नरकायु नारकियों को बनती है, नरकायु के उदय में नरकायु बनती है, तो कभी नहीं बनती। देवायु के उदय में देवायु नहीं बनेगी, नरक गति देवगति, वैकृत शरीर यानी वैकृत शरीर के उदय में वैकृत शरीर नहीं बनेगा। आहारक शरीर, क्योंकि छठे गुणस्थान वाले को आहार का उदय है, उसके उदय में आहारक शरीर नहीं बनेगा, 7वें 8वें को बनेगा। वैकृत शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, नरक गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर, तीर्थंकर के जिसको उदय है 13वें 14वें वाले को, उसको तीर्थंकर का बंध नहीं होता है, क्योंकि बंध तो रुका है 8वें में। ये 11 प्रकृतियां परोदय से ही बनती, ही लगाया, यानी अपने उदय में बनती नहीं है, यानी नारकायु देवायु कौन से, पर आयु के उदय में बंधेगी, तीर्यंच आयु मनुष्यायु वालों को बंधेगी देवायु नरकायु। ऐसे वो तो नरक गति देवगति वगैरह जो है उसके अनुपूर्विया, वो तीर्यंच वालों को बंधेगी। एक्चुअली अनुपूर्वी में वो नहीं लेना है, नरगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी तो कौन से अनुपूर्वी के उदय में बनेगी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी में हो सकती है समय दृष्टि, पर नरक गत्यानुपूर्वी किसी आयु अनुपूर्वी के उदय में नहीं बनेगी, क्योंकि विग्रह गति में नरक नरक गति अनुपूर्वी का उदय बंध नहीं है। हाँ, परोदय से बनती। यहाँ उपसंहार गाथा ऊपर 11 नंबर की हम देखते हैं। तिथेर निरय देवा उवच वेयु व्यचक्कदो व्याहारा एकारस पयडीनम बंधोहु परोदये वुत्तो, यानी 11 प्रकृतियों का बंध परोदय से कहा गया है। कौन कौन सी है, तीर्थंकर, नारकायु देवायु, वैकृत शरीरादि छह, जिसको वैकृत षटक कहेंगे हम, यानी दो गति गत्यानुपुरी और वैकृत शरीर अंगोपांग, और दो आहारक यानी जिसको आहारक द्विक कहते हैं, आहारक शरीर और अंगोपांग। इन 11 प्रकृतियों का बंध परोदय से कहा गया है। ये समझने में आसान है ना, इसे कोई डिफिकल्ट तो नहीं है, और हम सोचकर देख सकते हैं। हाँ, याद रखे तो अच्छा है ना। अब कहते पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, ये उन्होंने ब्रैकेट में डाला, क्यों डाला? 14 अंशनावरणीय, अच्छा 14 अंशनावरणीय मिच्छते इति पाठः नास्ति।
अच्छा, बाकी की रुद्रा के उदय में भी वो
अन्य प्रति में नहीं, वो नहीं है, केवल वर्णीय इतना ही लिखा है। ठीक,
किसी बाकी के पाठ के उदय से भी बंधेगी ना वो, बाकी पांच रुद्रा के उदय में भी ये चार लक्षण भी बंधेगी,
अपने उदय में बंधेगी कि नहीं बंधेगी ये चल रहा है। आप क्या कहते
हैं? नहीं, क्या बता रहा हूँ, पांच निद्रा का उदय है तभी भी ये चार दर्शन वर्णीय बन देगी,
फिर से
पांच निद्रा का उदय है,
पांच निद्रा का उदय है,
ऐसा इसका भी उदय है, सॉरी
वही मैं पूछने वाली थी। अच्छा, ये ऐसा कौन सा है कि जो इनका चार का उदय है और उनका नहीं है, और जब बंद रही है, ख्याल में है ना, जहाँ उनका उदय वहाँ इसका भी है। तो पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, तेजस और कारमान शरीर, वर्णादि चार, अगुरु लघुक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, निर्माण और पांच अंतराय, ये 27 प्रकृतियां स्वोदय से बनती है। इसका अर्थ है कि उनका उदय तो ऊपर तक है और बंध नीचे रुकता है, नहीं तो स्वोदय में बंद ही रही है।
उपगत को छोड़ा ना, उपगत अगुरु लघु चतुष लेते हैं, उसमें उपगत
चतुष कहाँ लिया? केवल अगुरु लघु लिया है, ना परघात लिया ना उच्छ्वास लिया, अकेले अगुरु लघु लिया है। क्या आप क्या पूछना चाहते हैं?
उपगत भी छोड़ी से बदले,
क्या क्या क्या
उपगत,
उपगत का प्रश्न क्या है?
वो छोड़े से बंदे की परोदय से भी बंदे।
देखो, उपघात ये कैसी प्रकृति है, ध्रुवोदयी है क्या नहीं है? हाँ, कहाँ तक बनती है? आठवें तक, उदय कहाँ तक है? हाँ, वो तो
पर ये सभी का ऐसे है ना, पांच ज्ञानावरण का बंद 10वें तक है, उदय 12वें तक है।
तो मेरा ये कहना है
उपघात को क्यों छोड़ा, इसे मेरा
उपघात को क्यों छोड़ा है ना। उपघात का उदय उसमें भी है ना, ध्रुवोदय है क्या, वो विग्रह गति में है क्या?
नहीं,
विग्रह गति में उदय है कि नहीं,
नहीं है?
पर उदय में भी होता है वो, तो बाद में लिए ना।
अच्छा, मेरा खुद ही था,
दोनों के उदय में उसको लिया है। देखो, पांच दर्शनावरणी का अर्थ होता है पांच निद्रा, कहाँ चार है? अभी मैं पहले लाइन पर आ गई हूँ,
नेक्स्ट प्रकृति पर
मैं 15 पेज पर आ गई हूँ, ये स्वोदय से वाली हो गई 27। हाँ, पांच दर्शनावरणी का अर्थ पांच निद्रा, क्योंकि चार दर्शनावरणी वहां ली थी हमने, यहाँ पांच दर्शनावरणी ने जो स्थान वृद्धि वगैरह पांच प्रकार की निद्रा है वो, दो वेदनीय, इसमें ऐसा लिख लेना है जो जागृत अवस्था में पांचों का ही उदय नहीं है तो इनका बंद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दर्शनावरण तो ध्रुवबंधी प्रकृतियां है, तो जागृत अवस्था में भी इसका बंद हो रहा है ना, और निद्रा में भी बंद हो रहा है, ये स्वपर उदय, समझ में ही बात, साता साता, साता के उदय में भी असाता बनती है, साता के उदय में साता भी बन सकती है, तो दोनों ही स्व पर उदय में होती है। 16 कषाय, अब एट ए टाइम तो किसी क्रोध का या मान का और माया का उदय हो रहा है, पर बनते तो सब है एट ए टाइम। 9 के 9 ध्रुव बंदी है, नहीं निरंतर नहीं कहेंगे उसे ध्रुवबंदी, इसलिए जब तक विच्युति नहीं होती तो लगातार बनती रहती है, उसको ध्रुवबंदी कहते हैं। निरंतर बंदी का अर्थ अलग होता है, निरंतर बंदी का अर्थ होते कम से कम अंतर्मुहूर्त तक तो बनती ही रहेगी, उसको निरंतर बंदी कहते। जैसे 4 आयु, तीर्थंकर, आरग्विक, इनको निरंतर बंदी कहा, केवल अंतर्मुहूर्त तक नहीं, मिनिमम अंतर्मुहूर्त। ध्रुवोदयी 12 ही है,
13
बताना
निर्माण
पहला लास्ट वाली पहले बोले
नहीं नहीं होते
ध्रुवोदयी कह रहे नाम कर्म की ध्रुवोदयी बता रहे तेजस कर्माण भी है ना,
तेजस कर्माण अगर लघु चतुष नहीं अगर लघु, मैं सोचा था वहाँ पे हम लोग
स्थिर उपघात शायद है, स्थिर अस्थिर है और शुभ अशुभ, ये 4 ध्रुवोदयी तो है ही है।
तो उपघात ध्रुवोदयी में लेते हैं तो उसका बंध उसके साथ ही होगा ना, इसीलिए मैं उपघात में अटक गए।
पर उपघात के उदय में परघात भी बन रहा है ना, ये कहना चाहते हैं। हाँ, तेजस कर्माण, वर्णादि 4, सिर सिर शुभ अशुभ, अगुरु लघु
और उपघात,
उपघात तो 12 हो जाएगी।
तो उपघात
तो निर्माण कहाँ रह गया,
उपघात
निर्माण लेना।
अच्छा, मैं 13 का क्या,
अभी देखना है क्या, कर्मकांड निकालना पड़ेगा।
नहीं नहीं निर्माण है, निर्माण का तो निरंतर बंद है ना,
रो दही लेना है, बंदी नहीं ध्रुवोदयी, निर्माण लेना उसमें
पक्का है।
क्या नहीं, तो ध्रुवोदयी है कि ध्रुवबंदी है, ध्रुवबंदी देखो देखो, ध्रुवबंदी है ना वो निरंतर उसका बंद हो रहा है, और ध्रुवोदयी ने निरंतर उनका उदय हो रहा है। जैसे स्थिर और अस्थिर में से बंद एक का ही होता है, पर उदय दोनों का एट ए टाइम चलता है। उपघात निरंतर है और उसमें निर्माण,
निर्माण
निरंतर की टोटल पढ़िए, अलग अलग लिखे, चलो कल देखते हैं। यहाँ 5 दर्शनावर से फिर पढ़ेंगे, पहली लाइन से जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो नो।